العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 1443 ہجرا کے ایام عزا کی آج چار محرم کی مجلس ہے. یہ بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے حساب سے, اور امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور ایک طرح سے آج کی مجلس اس عشرے کی پانچویں مجلس ہو کر آدھی مجلسیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد باقی پانچ مجلسیں کل سے شروع ہوں گی. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ پہلی پانچ مجالس کے آغاز میں, یعنی ہر مجلس کے شروع میں, کچھ عزائے امام مظلوم اور عزاداری کی فضیلت, عزاداری کی اہمیت, عزاداری کا ثواب, اس حوالے سے گفتگو کی جائے. انشاءاللہ کل سے یہ والی تمہید تھوڑی سی بدلے گی اور عزاداری کے حوالے سے ہماری ذمہ داری. تو ابھی تک تو ثواب, فضیلت, مختلف واقعات, روایتیں, یہ سب بیان کیے جا رہے تھے, اور آج اس سلسلے میں جیسا میں نے کہا آخری گفتگو ہے فی الحال. اور جو کل میں نے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا تھا, آج بالکل اس کا الٹا واقعہ, اور یہ بھی عزائے امام مظلوم کی اہمیت کو بیان کرنے والا. لیکن وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے سورہ فرقان کی اس آیت کو جو کل بھی تلاوت کیا گیا تھا لیکن ترجمہ نہ ہو سکا, ذرا سا واضح کر دوں. سورہ فرقان قرآن کریم کا 25 سورہ, سورہ نمبر 25. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ پہلی آیت ہے جس میں قرآن کے لیے لفظ فرقان آیا ہے, قرآن کا ایک اور نام, تو پورے سورے کا نام سورہ فرقان ہے. گرچہ یہ آیت شاید میلبرن کے بعض علاقوں میں بینڈ ہو, کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن بھی اس لیے نازل کیا اور پیغمبر کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں. اور جن حلقوں میں, خاص طور پر مومنین کرام میں, یہ تصور ہے کہ ڈرنا ڈرانا یہ ہمارا مسئلہ نہیں, جائیے جا کے یزید کو ڈرائیے اور ڈرائیے جا کے شبر کو ڈرائیے تاکہ وہ سمجھ جائے اور شاید جنت میں آ جائے, نعوذ باللہ من ذالک, ہم مومنین کو کیوں ڈراتے ہیں, تو یہ شاید پہلی آیت مناسب نہیں ہے مومنین کے اس مجمع میں. لیکن چونکہ آن لائن مجلس ہے, ہر ایک کو اختیار ہے کہ اگر یہ آیت اس کے لیے ذرا بھاری ہے تو وہ چلا جائے کسی اور طرف. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ساری برکتیں اس ذات کی ہیں جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ یہ بندہ نذیر بنے. اور پھر میں نے کہا یہ قرآن کا ایک بہت اہم سورہ. یہ الفاظ کبھی ایک کنفیوژن کریٹ کر سکتے, کنفیوژن نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی, کہ شاید قرآن کے سوروں کی دو کیٹیگریز ہے, کچھ اہم سورے ہیں, کچھ نعوذ باللہ غیر اہم. ایسا تو نہیں ہے نا, پورا قرآن ایک ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کا ایک بہت اہم سورہ ہے, وہ اس حوالے سے کہا کہ اس سورے کے آخر میں جو ایک پیغام دیا گیا, یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور سمری. اور اس سورے کی ایک خاص اہمیت یہ میں بتا دوں کہ یہ کوئی ایک خاص اس کی خصوصیت ہے جس کی بنا پر یہ قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جہاں پہ یہ نازل ہوا ایک مخصوص زیارت وہاں پہ بنائی گئی اور طویل عرصے تک وہ زیارت باقی رہی. اب قرآن کے 114 سورے کہاں کہاں نازل ہوئے مختلف جگہوں پہ, لیکن کتنی جگہوں پر آپ کو کسی سورے کے حوالے سے کوئی زیارت بنی ہوئی نظر آئے. ہاں, پہلا سورہ اقرا بسم ربک الذی غار حرا میں نازل ہوا, لیکن وہاں بھی غار حرا میں اس حوالے سے کوئی زیارت نہیں. وہاں پیغمبر نے اعلان رسالت کا حکم پایا, اس لیے غار حرا ایک زیارت ہے. لیکن چلے, پہلا سورہ. آخری سورہ غدیر خم کے میدان میں نازل ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, وہ ایک مخصوص زیارت ہے. لیکن ان دو کے علاوہ, اور یہ بھی پورے پورے سورے نہیں, چند آیتیں, قرآن کے کتنے باقی سورے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی زیارت بنائی گئی. سورہ فرقان وہ سورہ ہے جس کے لیے خاص زیارت بنائی گئی جو تقریباً 1400 سال تک باقی رہی. اور جن کو یاد ہے 80s تک, ارلی 80s تک مسجد قبا, مدینے کی وہ مسجد جو آج مدینے میں ہے, پہلے مدینے سے باہر تھی, یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. تمام دنیا کی مسجدیں اسی مسجد کی بیٹیاں, بہیمانہ کے سب سے پہلی مسجد قبا کی. اور اسی لیے وہاں کی مشہور حدیث ہے جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں, شیعہ اور سنی تمام علماء اس حدیث کو مانتے, کہ پیغمبر ہر سٹرڈے کے دن مدینے سے نکل کے اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے جو آج بھی مسجد میں محراب کے اوپر حدیث لکھی, کہ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے, طہارت کر کے کوئی شخص اس مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تو اسے اس نماز پہ 70 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا, جو سب اللہ نے قبول کر لیے, حج مقبول, عمرہ مقبول. تو یہ مسجد قبا بہت اہم. اس مسجد کے صحن میں باقاعدہ طور پر ایک الگ سے زیارت بنی تھی صحن مسجد میں, اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ وہ جگہ کہ جب پیغمبر ایک سٹرڈے کو یہاں نماز پڑھنے آئے, کچھ دیر آرام کے لیے یہاں پہ لیٹے اور سورہ فرقان نازل ہوا. جب مسجد قبا کا آخری ایکسٹینشن ہوا شاہ فہد کے زمانے میں, تو اس وقت یہ ساری زیارتیں ختم کی گئیں, اس میں یہ بھی شامل ہے. تو کوئی وجہ ہے کہ سورہ فرقان کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہوئی, وہ پھر کبھی الگ گفتگو ہو جائے گی. البتہ ایام اعظم میں, اور خصوصاً میلبرن اور سڈنی میں جہاں لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے. حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خود اپنے گھر پہ ہر سال ماہ مبارک کے رمضان میں تفسیر قرآن کا اہتمام کرتے تھے, جو ان کے اپنے گھر پہ ہوتی تھی وہ میزبان ہوتے تھے اور بیان بھی خود ہی کرتے تھے. تو اس کے جو کیسٹ کچھ مل جاتے ہیں, شروع شروع والے زمانے میں تو کیسٹ تھے بھی نہیں, تو سورہ فرقان ایک سال ان کا موضوع تھا. اور یہی آیتیں جو آج میں نے تلاوت کی, وہ نہیں, جو ابھی مقداد کے واقعے میں آنے والی آیتیں ہیں, وہی ان کی اس سال کی تقاریر کا عنوان تھا. وہ آپ کو جو حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی ایک ویب سائٹ ہے جو ان کے نام پہ بنائی گئی ہے, ان کی ساری جتنی اویلیبل تقاریر ہے, آڈیو یا ویڈیو, وہ سب اس میں موجود ہیں. تو وہاں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. سنیے اور لطف لیجئے سورہ فرقان کا ماہ محرم کی ان تاریخوں میں. لیکن جو آیت اس کا عنوان آج کی مجلس کا بننے والی ہے وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک آیت اور آئی. اچھا, یہ جو آیت جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی, یہ ہماری شریعت کا یا فقہ کا ایک بہت اہم اصول ہے. جو ہمارے یہاں مسائل مجتہدین بتاتے ہیں, جس علم کا نام ہے علم فقہ, کیا انگلش میں کہتے ہیں جورسپرڈنس, اسلامک لا, یہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں, اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ پرنسپل ہیں, کچھ فارمولے ہیں. उनमें से एक सूरह फुरकान की इस आयत के हवाले से भी आता है। आयत का तर्जमा सुनिए, फमा बकत अलैहिमुल अर्ज वस्समा। कुरान कुछ लोगों का तस्करा कर रहा है, माजी की उम्मत का, वो लोग इतना बुरा उनका हशर हुआ, ना उन पर जमीन रोई, ना आसमान रोया, ना जमीन रोई। फमा कानू मुंजरीन, और अल्लाह ने उनको कोई मोहलत नहीं दी। ये सूरह फुरकान की आयत, नहीं सूरह दुखान। फमा बकत अलैहिम, उनके ऊपर ना जमीन रोए ना आसमान, और उनको मोहलत नहीं मिली। तो अब यहां से एक शरीयत का उसूल बना है, बहुत अहम उसूल। यह आयत सूरह दुखान की है और सूरह फुरकान की आयत इसके फौरन बाद मैंने तिलावत की। ये दोनों आज की तकरीर का उन्वान है, पहला आजादारी के हवाले से, दूसरा इमाम जमाना के हवाले से। आज के खुतबे में ये दो आयतें मुझे तिलावत करने का इरादा था। तो अब देखिए, आयत है कि इनके ऊपर ना आसमान रोया ना जमीन रोई। तो फौरन एक सवाल दिमाग में आता है, और यही सवाल फिका का एक उसूल, कि इन पर तो नहीं रोया तो जमीन और आसमान तो किसी पे नहीं रोते। यह कुरान का कहना कि उन लोगों पर ना आसमान रोया ना जमीन रोई, तो क्या कोई ऐसा इंसान है जिसपे जमीन भी रोई और आसमान भी? जी हां, यही मासूम की हदीस है कि ये जो कुरान ने कहा उन पर नहीं रोए आसमान और जमीन, तो इसलिए कहा कि कुछ ऐसे हैं जिन पर आसमान भी रोया और जिन पर जमीन भी रोई। यह अकली सवाल भी आता है, इमाम ने जवाब भी दिया तफसीर मजमूल बयान में, और इससे हमारी फिकह का एक अलग से उसूल भी बना। अब पहले वो उसूल बता दूं तो आप हजरात तो समझ गए, जो मीडिया टीम बैठी है, कि इशारा किस तरफ होगा मासूम का। लेकिन इससे एक उसूल बना, और वो ये है कि कुरान की आयत में अगर कोई हुक्म आ जाए तो उस आयत से उल्टा हुक्म भी साबित होता है। जैसे शेख जाफर तुस्तूरी ने, बहुत ही मशहूर हमारे खतीब हैं, एक मुश्तहिद जो जाकिरी करता था और बेमिसाल जाकिर, सूरह कारिया की आयत पर एक एतराज है, नारुन हामिया। कुरान कह रहा है जहन्नम क्या है? जहन्नम गर्म आग का नाम है, नारुन आग है, हामिया गर्म गर्म। एक सवाल हुआ कि आग तो होती ही गर्म है, ये ठंडी आग दुनिया में कहां है जो ये कहा जाए? अब उस वक्त कोई कैनेडा वेनेडा में लोग नहीं रहते थे जहां पे आज क्या वो फ्रोस बाइट होता है, तो अरब के माहौल में कोई ठंडी आग होती है? आग तो होती ही गर्म, तो ये कहने की जरूरत क्या है कि गर्म आग? मासूम की हदीस। इमाम ने कहा हाँ, जहन्नम की आग ऐसी है कि जब उसमें किसी को जलाया जाएगा तो वो कहेगा वो जो दुनिया में आज तक आग हमने देखी वो तो इसके मुकाबले में ठंडक है, बर्फ है, ये दुनिया की आग। जो एक और जगह मौला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया जहन्नम की आग को अगर 70 मरतबा पानी से धो 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 तो ठंडी होकर ये दुनिया की सख्त तरीन आग बनती। तो जहन्नम की आग को देखकर दुनिया की आग ठंडी आग लगेगी, इसीलिए कुरान ने कहा नारुन हामिया। अब देखिए गर्म आग कहा, तो सवाल आया कि क्या ठंडी आग भी होती है? ये उसूल फिका का चल रहा, और यहीं पे मैं अक्सर कहता हूं कि तारीख को समझे बगैर एतराज कर देना हमारे यहां लोगों की आदत बन गई, मालूमात है नहीं एतराज। लखनऊ, खुसूसियत लखनऊ की एक ही है कि वहां पे चुप ताजिए का जुलूस निकलता था और निकलता है, अब ये कोविड वगैरह को छोड़ दीजिए, और फिर कराची के अंदर भी मेरी मालूमात के मुताबिक पंजाब में चुप ताजिए का जुलूस नहीं होता है, लेकिन कराची में होता है 8 रबीउल अव्वल की सुबह चुप ताजिए का जुलूस। बाकायदा मिंबर से मैंने सुना कि वो एतराज कर रहे हैं कि जी ये देखिए आजादारी में लोग कैसी कैसी चीजें लेके आ गए, चुप ताजिया का जुलूस, हर ताजिया चुप होता है, क्या तुमने कभी कोई बोलता ताजिया देखा? ये मजमे से कहा जा रहा है, बेचारे को पता ही नहीं कि चुप ताजिया कहते किसे हैं और चुप ताजिए की तारीख क्या है, और चुप ताजिए में हम ताजिए को कह रहे हैं कि चुप है, कि ताजिया उठाने वालों और उस जुलूस में शरीक होने वालों को कह रहे हैं कि वो चुप है। कोई चीज बोलने से पहले मालूम तो हासिल कर लो ना कि यह है क्या चीज, चुप ताजिया। आज की मजलिस जो कि हबीब इब्ने मुजाहिर के हवाले से है, तो हबीब इब्ने मुजाहिर का एक वाकया 3 दिन पहले मैंने पढ़ा था आजादारी के हवाले से। ये वाकया अब जो मैं पढ़ रहा हूं ये हबीब का नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता, कि वही जमाना अवध का, अंग्रेजों का कब्जा होता जा रहा है, लखनऊ जो के कैपिटल है अवध का, तो जो वहां पे जो बादशाह हैं या जो उनके वजरा हैं उनके बड़ा कड़ा वक्त आया और बहुत इम्तिहान का वक्त। तो एक साहब ऐसे थे और लखनऊ में तो हर घर में ताजिया रखा जाता था, या में अजाम का चांद नजर आते ही ताजिया सजाया जाता था और फिर आखिरी दिन इस ताजिए को उठाकर इस तरह दफन करते थे जैसे वाकई हम किसी मरने वाले को दफन करते हैं। और कराची में अभी भी जो यूपी वाली आजादारी के आदि हैं तो वो ये मंजर देखते रहते हैं। अब वो ताजिया, वो वजीर जेल में डाल दिए गए, बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए जो ब्रिटिश एम्पायर का तरीका था, और वो ताजिया उनके घर में रखा है ताजिया उठाना। फिर बाद में उनको रिहा किया गया। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, अन्ना अगर हर सवाल का जवाब देने लगूं तो 2 घंटे भी कम है। उनको रिहा किया गया। अब जो रिहा किया गया तो मालूम हुआ कि अय्यामेज़ा की आखिरी तारीख कल आ रही और आज उनको रिहा किया गया। तो पहले ताजिया जाता था वो वाला, उनके घर का ताजिया पूरी शान के साथ जुलूस की शक्ल में, और पुराने जमाने में जुलूस का इंतजाम करना आसान नहीं था, बहुत वक्त लगता था। मुख्तलिफ अंजुमनों से बात करें, नोहा खान लोगों से बात करें, सारी सेटिंग करें, कल सुबह ताजिया दफन करना है और आज वो रिहा हो रहे हैं। इतना वक्त ही नहीं है कि कोई इंतजाम करे। कहा नहीं, मौला हमारी मजबूरी देख रहे हैं, हम ताजिया तो उठा के उसे दफन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चुपचाप ताजिया लेके चले जाएंगे। ना कोई अंजुमन, ना कोई नोहा खान, ना कोई वो मातमी दस्ता, ताजिया दफन करना है। सुबह सवेरे नमाज के बाद ताजिया लेके चले, महल्ले वाले जमा हुए, जहां जहां से गुजरा और लोग जमा हुए, और ऐसा माहौल बन गया कि इतनी रिक्कत तारी हुई कि अगर 50 नोहे भी पढ़े जाते तो इतनी रिक्कत तारी ना होती। और इतना ज्यादा गम का माहौल बना के लोगों ने कहा, ये तो हर साल ये वाला ताजिया तो इसी तरह उठना चाहिए जिसमें शरीक होने वाले बिल्कुल चुपचाप चले। ये है चुप ताजिया, वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ताजिए तो सभी चुप होते हैं, बोलता हुआ ताजिया कहाँ है जो तुम ये कह रहे हो कि चुप ताजिया। लेकिन खैर, वो तो है कि तारीख वारीख कुछ पता नहीं है, अपने खुद अपने बुजुर्गों के हालात नहीं मालूम, और एतराज करने के लिए जबान खोली है, इसलिए कि यूट्यूब पर तो वही क्लिप चलेगा जिसका थंबनेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो। ये इसका थंबनेल मैंने देखा था, चुप ताजिया और बोलता ताजिया, यही देखकर तो मैंने भी क्लिक किया। ये बोलता ताजिया क्या चीज ये बताना चाह रहे, पता चला कि ये बताया उन्होंने। खैर, लेकिन तारीख नहीं पता इसलिए एतराज गलत था, उसूल अपनी जगह सही कि अगर ये कहा गया कि चुप ताजिया तो इसका मतलब ये है कि कोई बोलता ताजिया भी है। जी हाँ, बाकी जितने ताजिए वो इन मानों में बोलते हुए हैं कि शरीक होने वाले नोहा पढ़ते जा रहे हैं, मातम करते जा रहे हैं, या हुसैन कहते जा रहे हैं, या अब्बास कहते जा रहे हैं, वो बोलता ताजिया, ये चुप ताजिया। ये शरीयत में ये उसूल बहुत अहम है। मैं तो कहीं से कहीं बहता हुआ चला गया, मुख्तसर बात करूं, कुरान करीम की एक आयत, एक नहीं सैकड़ों आयतें जो शरीयत में उसूल बना, लेकिन ये आयत इसलिए बहुत अहम कि इसकी बिना पर इस्लामी सोसाइटी रन करती, माशरा चलता जिन उसूलों पर है उनमें गवाही, हर चीज में गवाही चाहिए होती है, चांद हुआ कि नहीं गवाही, ये चीज पाक है कि नजीज गवाही, निकाह हुआ कि नहीं गवाही, किस तलाक दी गई कि नहीं गवाही, तब गवाही का उसूल यहाँ आयत है, इंजाकुम फासिकुन बिनबईन फतबयनु। देखो, अगर कोई फासिक कोई खबर लेके आए तो पहले तहकीक कर लो, ये ना हो कि फासिक खबर लाए और तुम दौड़ पड़े। आज यूट्यूब इसी का नाम, फासिक खबर लाते हम दौड़ पड़ते हैं, आज फेसबुक इसी का नाम है, फासिक खबर लाते हम दौड़ पड़े, आज इंस्टाग्राम इसी का नाम है, फासिक खबर लाते हम दौड़ पड़े। कुरान कह रहा है खबरदार, कोई फासिक खबर लाए उसके ऊपर फतबयनु, पहले उसमें तबयन करो, तहकीक करो, देखो कि सही है कि गलत। अब वो अपनी जगह एक अखलाकी उसूल है जिस पर कभी रमजान में या पहले अशरे के बाद बात होगी, लेकिन इस फिका का उसूल क्या बना कि अगर कुरान कह रहा है फासिक की खबर में तहकीक करो तो इसका मतलब आदिल अगर खबर लेके आए तो तहकीक नहीं करना, वरना ये फासिक कहने की जरूरत क्या थी कुरान को। कुरान कहता कोई भी खबर आए तहकीक करो, कुरान ने कहा नहीं, फासिक खबर लाए तो तहकीक करो। इसका मतलब हुआ कि अगर आदिल खबर लेके आ रहा है तो कोई तहकीक की जरूरत नहीं, यही उसूल बना। आदिल कहे चांद हुआ मान लेंगे, आदिल कहे चीज नजीस है मान लेंगे, आदिल कहे चीज पाक, एक आयत लेकिन वही उसूल। तो अब रावी ने कहा, इस पे ये तो मेरा अपना पसंदीदा मौजू है ना, मैं 500 मिसालें मजीद इसकी दे सकता हूं, लेकिन न वक्त है न जरूरत। रावी ने कहा, मौला ये जो कुरान ने कहा कि उन लोगों पर न आसमान रोया न जमीन रोया, तो आसमान और जमीन तो किसी पे भी नहीं रोता। क्या किसी पे आसमान जमीन रोता है कि कुरान ने यह कहा उन पे नहीं रोया? इमाम ने कहा बेशक आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है। और फिर इमाम ने इसकी तफसील बताई, कहा कि जिस वक्त कोई आलिम बाअमल इंतकाल करता है तो 40 दिन तक जमीन और आसमान उस पर रोते हैं। हम तो खुश होते हैं ना, एक भला और टली मसला, लेकिन 40 दिन। और जब कोई नबी दुनिया से जाता है तो 40 साल तक जमीन और आसमान उस पर रोते हैं। और जब हमारा जद दुनिया से गया था उस दिन से लेकर कयामत तक आसमान मुसलसल रो रहा है और जमीन मुसलसल रो रही है। अंबिया पर भी 40 साल रोता है आसमान और जमीन, लेकिन सरकार सैयदुल शुहदा का गम, हम और आप इंसान है ना, कमजोर है ना, पूरा साल सफे अजा पे नहीं बैठ सकते, तो कहते हैं 2 महीने 8 दिन के बाद आज हम सफे अजा बढ़ा रहे हैं, अगला चांद मुहर्रम का हो तो दोबारा बिछाएंगे। आसमान ये नहीं कहता, आसमान कहता है कि मैं रो रहा हूं हुसैन पर और कयामत तक रहूंगा। जमीन ये नहीं कहती है, जमीन कहती है मैं रो रही हूं हुसैन पर और कयामत तक रोती रहूंगी। और अगर आप कह दें कि हमने नहीं देखा आसमान और जमीन को रोते हुए, तो कल रिवायत में पढ़ चुका हूं, मासूम ने कहा कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हम बसीरत से देखते हैं कि जमीन और आसमान रो रहे हैं, ये कयामत तक रोते रहेंगे जमीन और आसमान, जो अंबिया के लिए भी नहीं रोए, क्योंकि जितना रुतबा हुसैन का बुलंद है अंबिया से उतना ही मातम भी बुलंद है। और यहां कयामत से मेरी मुराद क्या, वही जो मेरे मौजू का एक दूसरा हिस्सा, कयामत से मुराद कयामत कुबरा नहीं या कयामत सोहरा, यानी जब जमाने का इमाम आएगा और हुसैन के खून का इंतकाम ले लेगा, तब जमीन और आसमान का मातम बंद होगा। अब वो एक मौजू है ना इमाम जमाना, वो इंशाल्लाह कल से ज्यादा तफसील से शुरू होगा। तो जमीन और आसमान जिस हुसैन पे रो रहे हैं, मोमिन का तो ज्यादा हक, मोमिन पर तो ज्यादा हक आता है आका हुसैन का। क्यों? क्योंकि हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जमीन और आसमान के सरदार बहुमाना तो हैं कि कायनात उनकी, लेकिन हम तो बराह रास्त हुसैन के क़यादत में जन्नत में जाने वाले, हुसैन का हम पर ज्यादा हक है, हमें और रोना चाहिए, और जरा सा भी इसमें कोताही होगी। अब सुनिए एक मुख्तसर और वाकया, मैं इस किस्म के वाकयात इसलिए भी पढ़ रहा हूं कि अलसर इस्लामिक सेंट्रल मेलबर्न की मजलिस है, और एक ऐसा माहौल कुछ बन रहा है आज दुनिया का कि उलमा और मुज्तहिदीन और मराजे कराम को बुरा कहना शियत का एक तरीका बनता जा रहा। लेकिन अब कैसे बुरा कहा जाए, आम आदमी इतना ना समझ तो है नहीं, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ चीजें ढूंढ के निकाली जाती। उनमें से एक चीज यह है कि सब लोग मुकसर, न मौला की फजीलत को माने ना आका हुसैन की, एक चलता हुआ इल्जाम है जिसपे चाहे आप लगा दी। एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये लोग आजादारी के इतने कायल नहीं है और इतनी अजा नहीं करते जितने मसलन वो मातमी लोग कर रहे होते। वाह, ये मेरा असल मौजू नहीं है, तो मैंने कहा इस वजह से, जैसा मैंने कहा कि चुप ताजिए पे किसी ने एतराज कर दिया मिंबर पे बैठे हुए आदमी ने लिबास उलमा में, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ताजिए की तारीख क्या है और चुप ताजिए की तारीख क्या। उसी तरह से जब ये एतराज होते तो लोग इसलिए बहकावे में आ जाते कि उनको पता ही नहीं कि इस अंदाज से भी सफे अजा जो हम तक पहुंची है, इसमें इन मराजी और उलमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं ये नहीं कहता कि सारा इनका है, अवाम का भी हिस्सा है, लेकिन उनका बहुत बड़ा हिस्सा। कल का जो वाकया सुना आज उसका उल्टा वाकया सुनी, घर के ये उल्टा वाकया मैं इससे पहले पिछले साल की एक तकरीर में पढ़ चुका हूं, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा उस साल नहीं आया था, यानी पिछले साल नहीं आया था जब वाकया पढ़ रहा था। हमारी बिल्कुल रीसेंट तारीख के अजीम तरीन उलमा में से एक, लेकिन रीसेंट तारीख का मतलब यह कि हमने उनका जमाना पाया है, वैसे वो पूरी शिया तारीख के टॉप 10 मराजे में से एक हैं, मरहूम आयतुल्लाह खोई, बहुत ही अजीम मरजे। क्या इनके हालात बताए जाए, मैं बहक जाऊंगा और यह अय्याम मेज़ा के मजालिस का असल उन्वान रह जाएगा। कल का वाकया क्या था, आका हुसैन पर आयतुल्लाह मोहसिन हकीम जैसा मर्जे रोया जो आका खुद से पहले के मर्जे। खून के आंसू, आंखों से खून के आंसू जारी हुए जलील उल कदर मर्जे के गमे इमाम में, ये कल का वाकया था, अब आज उसका बिल्कुल बरक्स वाकया। आगा खुई के जो दामाद थे, एक दामाद आगा नसरुल्लाह मुस्तंबित, वो खुद इतने बड़े आलिम थे कि बहुत से लोगों को यह अंदाजा था कि आगा खुई के बाद इन्हीं की तकलीद होगी। वो खाली ये नहीं है कि आगा खुई के दामाद हैं, इल्मी एतबार से खुद इतनी पाई की शख्सियत थे, लेकिन वो आगा खुई की जिंदगी ही में इंतकाल कर गए। आगा खुई ने अपनी बड़ी बेटी की बेवगी भी अपने आंखों से देखी। वो आगा नसरुल्लाह मुस्तंबित ये वाकया नकल करते हैं, और खुद आगा नसरुल्लाह मुस्तंबित के दामाद हैं जवाद गुलपायगानी, आगा गुलपायगानी के बेटे। ये आगा गुलपायगानी भी एक बड़ा नाम है। तो आधा वाकया आगा खुई के दामाद ने बताया, और उसका आखिरी टुकड़ा जो पिछले साल मैं नहीं बता सका, वो उनके दामाद ने, यानी आगा खुई की नवासी के शौहर ने, जो खुद अपनी जगह एक शोहरत रखते थे जवाद गुलपायगानी अपने बाप के मर्जे होने से। वाकया क्या है, बहुत मुख्तसर, कि आगा खुई का वो जमाना है जो नजब का पीक का जमाना, पूरी शिया तारीख में नजब का ऐसा गोल्डन पीरियड कोई नहीं गुजरा है, जब इतने उलमा, ऐसे मर्जे, ऐसे ऐसे इश्तेहाद के दर्स होते थे, और पूरा नजब का हौजा घूमता था आगा खुई के ऊपर। अगर आगा खुई किसी दिन दर्स दे रहे हैं तो नजब का हौजा खुला, चाहे बाकी सारे मराजे उस दिन आराम कर रहे हैं या छुट्टी कर रहे हैं, और आगा खुई अगर दर्स नहीं दे रहे हैं तो नजब के हौजे में तातील है, यानी छुट्टी है, चाहे हर बाकी हर आलिम दर्स दे रहा हो। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि मर्जी आगा मोहसिन हकीम थे, उनके होते हुए भी नजब का हौजा घूम रहा। जो मौला का जुमला है खतबा शख्सिया में, ये खिलाफत में मेरा वो काम है जो चिक्की में कुतुब का होता है, मैं मिला नहीं रहा हूं दोनों को। नजब के हौजे में आगा खुई की वो हैसियत थी। तो आज भी आगा खुई को इश्तिहाद का दर्स देना, लेकिन वहां स्टूडेंट इंतजार कर रहे, नहीं आए। वैसे कभी अगर छुट्टी होती है तो एक दिन पहले बता दिया जाता, वहां इंतजार हो रहा है, नहीं आए। इंतजार 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 नहीं आए। चले, मजबूरी लोगों को पेश आ सकती, मर्जे भी है तो इंसान ना, चले गए स्टूडेंट। अगले दिन फिर इंतजार इंतजार नहीं आए, तीसरा दिन आ गया। तो पूरी जिंदगी आगा खुई ने 60 साल तक इश्तिहाद का दर्स दिया है, जिस मस्जिद में आज वो दफन है, मस्जिद खजरा, जो नजब के जाहिरी ने उसी में तवील से दर्स दिया था। 3 दिन गुजर गए, वो आए नहीं। मजबूरी हो जाती है, लेकिन ऐसी मजबूरी तो जिंदगी में कभी नहीं हुई। अब बाकी तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन नसरुल्लाह मुस्तंबित तो दामाद है ना, चुनाचे वो पहुंच गए और उनके घर में दाखिल हुए। छोटा सा घर था, महल्ला अमारा में, नजब का एक बहुत मशहूर महल्ला अमारा, जहां पे आगा मोहसिन हकीम का भी घर था और आगा खुई का भी घर था, जिसे सद्दाम ने बाद में तोड़ दिया, और आजकल उसी में वो आलीशान सहने फातिमा के नाम से नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जाएंगे तो दिल खुश हो जाता। और इसी के इख्तिताम पर साफिए यमानी की कब्र है, जो वादी सलाम की पहली कब्र कही जाती है, जो मौला ने अपने हाथ से दफन किया। मैं जरा सा लोकेशन बता रहा हूं, वहां पे आगा खुई का घर था। चुनाचे गए ये दामाद अपने खुसूर से मिलने। जब उनके कमरे में पहुंचे, छोटे छोटे कमरे थे, छोटा सा घर था, देखा कि आगा खुई की आंखें इतने सुर्ख हैं, इतने सुर्ख हैं, इतने सुर्ख हैं कि अगर मसलन किसी को कोई आदमी जख्मी करे, उसकी पूरी आंख पे खून आ जाए, उससे ज्यादा सुर्खी। कल आगा मोहसिन हकीम की आंख की सुर्खी आपने सुनी हमें हुसैन में आंसू बहाने की, और आज आप उल्टी सुर्खी सुनी। और वो बैठे अपनी जगह पे, और अंदाज से लग रहा है कि वो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, आंख सुर्ख भी है। अब जैसे कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठा हो तो कह देगा कि मौलाना हाँ कभी ड्राइनेस की वजह से आंख बहुत सुर्ख हो जाती, लेकिन ये तो ऐसी सुर्खी के नजर नहीं आ रहा, नाबीना, उठ ही नहीं सकते अपनी जगह से। जब पता चला कि नसरुल्लाह मुस्तंबित आए, तो अगर कोई ने उनसे कहा कि देखो फुला दराज खोलो, उसमें छोटी सी डिबिया होगी। अब उन्होंने वो दराज खोली, उसमें छोटी सी डिबिया निकली। कैसे खोलो, इसमें खाके शिफाए असली हकीकी। देखिए खाके शिफा आका हुसैन की कब्र की चारों तरफ की मिट्टी, लेकिन सैयद अली साहिब रियाज, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं उसको छोड़ देता हूं, उनके जमाने में एक वाकया ऐसा पेश आया था। वो बहुत पुराने आलिम नहीं, आका कोई से 100 साल पहले के, कि आका हुसैन की कब्र में जहां आका की मैयत है वहां तक की जमीन खुल गई थी और आका का कंधा नजर आ रहा था, ये मिट्टी वो वहां से उठा के लाए। हो सकता है कि खाके शिफा 10 फीट या 5 फीट या 3 फीट तक की मिट्टी हो, लेकिन वो मिट्टी जो आका हुसैन के कंधे से मस हो रही। एक बार ऐसा वाकया पेश आया है कि वो करबला की वो जरी ऐसा खुल गई, वो लेकर आए थे और वो बहुत ही दुनिया का सबसे कीमती तबर्रुक था, बहुत ही खास खास उनके शागिर्दों को नस्लन बादा नस्लन मुंतकिल हुआ। वो बहुत मुख्तसर वो आगे खुई के पास रखी थी, उन्होंने कहा अपने दामाद से कि ये जो इतनी सी मिट्टी ये निकाल के मेरी दोनों आंखों पे लगाओ। दामाद ने कहा मतलब वो आजकल की तरह का कोई बेतुका आदमी तो नहीं है, जैसे आजकल ऐसे भी लोग, अरे कोविड वोवर्ड कुछ नहीं है, वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं कराना, ये सब साजिश है दुश्मनों की, होगी साजिश लेकिन वैक्सीन अपनी जगह, कोविड अपनी जगह है, ये कह सकते हैं कि दुश्मनों की साजिश से ये बीमारी फैली, कह ही नहीं सकते, यानी बीमारी कोई नहीं है खाली प्रोपेगेंडा। तो वो दामाद खुद एक मुश्तहिद और वाजिब इलाज, तो उसने कहा कि ये आप किसी डॉक्टर को दिखा के इलाज कराइए ना, ये तो ठीक है, वो इसका मुनकिर नहीं है, लेकिन साथ में दुआ और दवा साथ चलती है। कहा कि जो नजब के अंदर जो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, उनको 3 दिन से दिखाए, सबने कहा कि आपकी आई साइट जा चुकी है और अब इसकी वापसी का कोई तरीका नहीं। 2 या 3 दिन पहले मैंने कितने बड़े एक मर्जे का जिक्र किया था, वो आका खुई के जमाने के थे, साथ साथ वो फ्रेंच डॉक्टर ने जिनकी बीनाई जाहिर कर दी। तो आका खुई ने कहा जो इस वक्त अवेलेबल है, उन्होंने तो मना कर दिया, अब ये खाके शिफा ही है, ये मेरी आंखों पे लगाओ। मैंने उनकी आंखों पे लगाया और मैं चला गया। अगले दिन मालूम हुआ कि आका खुई दर्श देने के लिए आ गए हैं, विद इन 24 आवर्स वो सारी सुर्खी वर्खी जा चुकी है और बिल्कुल वो जो उनकी पहले से आई साइट थी वो थी, शायद उससे भी बेहतर हो गई थी। उन्होंने दर्श दिया। अच्छा, अब हुआ क्या था, वो आका खुई की नवासी जो है उनके शोहर जवादे गुल पाईगानी, वो बताते हैं कि ये बताया आका खुई ने कि मेरा घर बहुत छोटा था और मेरी बीवी को अय्याम अज़ा के पहले अशरे में मजलिस करने का बहुत दिल चाहता था और वो सफ़े अज़ा बिछाती थी। हमारे यहाँ भी औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है सफ़े अज़ा बिछाने में और उसको बचाने में और उसको आगे बढ़ाने में। अब घर बहुत छोटा है और आका खुई ठीक है उस वक्त मर्जे नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी एक ऐसा नाम था इल्मी दुनिया में कि अब उनके घर में मजलिस है, चली आ रही औरतें। और मैं तो कराची की बात कर रहा हूं अपने बचपने की, तो बहुत पुरानी बात नहीं, आप मुझे इतना बूढ़ा भी ना समझे हैं कि जितना कभी मेरी मजलिसों से लगता। जानने वाला हो जानने वाला ना हो, रिजविया सोसाइटी में फजर के बाद से मगरिब तक बल्कि रात के 11 तक औरतों की मजलिसें इस तरह चलती है कि ये नहीं है कि वो जानने वाला है तो उसके घर जाना है और वो बुलाए तो उसके घर जाना है। उस 10 दिन में घर हर एक के लिए खुला हुआ। और मैं आज भी आप हजरात में से उन लोगों को कि जो लंदन जा सकेंगे उनसे कहता हूं कि आप जाइए लंदन में, जो पूरा वेस्ट लंदन में जो पूरा इलाका है वेस्टन ग्रीन का, जहां पे आगा सिस्तानी का भी ऑफिस है, जहां पे आगा खामेनाई का भी ऑफिस है, जहां पे तमाम मराजी के ऑफिस है, वहां जाइए कभी पहले 10 दिन। इतनी कसीर तादाद में इराकी औरतें कि मुझे वो रिजविया का मंजर याद आ जाता है, सब अबाया पहन के फजर से लेके मगरिब तक होल के होल जा रहे होते हैं वो माहौल। और नजफ और आगा खुई का घर आ जाते हैं, सब भर जाती हैं औरतें। और ये जो है जरूरी नहीं है कि हर मजलिस के लिए वो इंतजाम हों जो अलसर इस्लामिक सेंटर में आपके लिए किए गए, जैसी जिसकी हैसियत, जैसा अल्लाह जिसको तौफीक दे, कुछ ना सही तो खदीर की तरह से मजलिसें होती है, चुनाचे कुछ कमरे में बैठा है तो कुछ सीढ़ियों पर बैठा है तो कोई किचन के पास बैठा है तो कोई दरवाजे पर बैठा है, खवातीन की मजलिस। लेकिन उसका नतीजा ये कि आगा खोई जो रोजाना इश्तेहाद का दर्स देते हैं, पहले रात को स्टडी करते हैं, वो स्टडी नहीं हो पाती, भर जाती है सब औरतें आके। तो एक दिन बीवी से कहा कि नजफ में इतनी मजलिसें हो रही, हर घर में मजलिस होती, मौला के रोजे में इतनी मजलिसें होती, अगर हमारे घर में ये मजलिस ना हो मुसलसल, साल में एक मजलिस रख लो, दो मजलिसें रख लो, तो मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी, जो सारी दुनिया से स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आए हुए। कहा बस इतना बीवी से कहा, बीवी कुछ बोली नहीं जवाब के अंदर, लेकिन बस उस रात को जब सोया तो सुबह ये हालत, और कल जब खाके शिफा लगाई तो कल रात को ख्वाब में मुझे ये पैगाम मिला। अब तफसील नहीं बताते हैं वो लोग जिनकी इमाम से मुलाकात हुई कि तुम्हें इस जुमले की वजह से मरते दम तक नाबीना कर दिया गया था, आंखों की बीनाई तुम्हारी वापस नहीं आना थी। कि भाई वो यही है ना कि किताबें पढ़ना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये किताबें पढ़ना अगर इतना अहम है कि आका हुसैन की आजादारी का तौहीन का पहलू निकल रहा है, नीयत नहीं थी तौहीन की, पहलू निकल रहा है, तो अल्लाह इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि कोई किताब पढ़ सको। लेकिन तुमने जो खाके शिफा अपनी आंखों से लगाई है उसकी बरकत है कि तुम्हें बीनाई वापस मिल गई। तो मरते दम तक आगा खुई अय्याम अज़ा में काले लिबास पहना करते थे मर्दे वक्त। तो जिसने गमे हुसैन मनाया कल सुना आपने, वो भी इतना बड़ा मर्जी के खून के आंसू रोए, और जिसने जानबूझकर नहीं, किसी बुरी नियत से नहीं, खुद इसी दीन की खिदमत की नियत से ये कहा कि चूंकि मजलिसें तो बहुत हो रही हैं, अगर इस घर में ना हो तो क्या हरज है, इतना अजीम मर्जी। और फिर परवरदिगार ने इसकी बरकत से आगा खुई को उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि उनके हालात बयान नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ एक जुमला और कह लूं, जुमला तो नहीं, एक छोटा सा वाकया ही, मैंने बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा, लेकिन रब इससे मिल रहा है और मैं अपने असल मौजू पर इसके जरिए से आ जाऊंगा। ये बीवी घर में मजलिस करती, हमारे यहां सही मानों में आजादारी को अगर किसी ने बचाया वो हमारी औरतें। अब ये बीवी मजलिस तो करती लेकिन उस अंदाज की भी आजादार नहीं कि मजलिस का ही मतलब निकाला जाए कि इसके बाद सारे वाजिबात हम पर से साकित हैं, सारे हराम हमारे लिए जायज, जो बहुत से मर्दों को भी ख्याल। जी हमने इमाम का हुक्म मना लिया, अगर नमाज कजा करे तो क्या हरज, और अगर हम बेपर्दा घूमे तो क्या हरज, और अगर हम दाढ़ी शेव करें तो क्या हरज, और अगर हम गाने सुने तो। ये आज का मौजू नहीं, इस दफा अब तक मैंने बहुत एहतियात की कि ऐसी कोई सख्त बात फिलहाल ना आने पाए। लेकिन आगा खोई की बीवी बहरहाल जिस वक्त की ये सारी बात हो रही है उस वक्त भी आगा खोई इल्म में इतने बड़े थे। जब उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में सद्दाम एक ऐसे मसले पे फंस गया कि उसको पता था कि सिवाय आगा खोई के इस मसले से उसको कोई नहीं निकाल सकता, फंस गया था एक मसले में। आज जो इराक में आप इतनी आजादारी भी देख रहे हैं, जियारत भी देख रहे हैं, चेहरुम के मौके पे 20-20 मिलियन लोग, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ एक शहर करबला में जमा हो जाते हैं, ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं इसमें सबसे अहम रोल आगा खोई का कि सद्दाम के जमाने में उसके सारे मजालिम को अपने सीने पे बर्दाश्त करके नजफ और करबला को बाकी रखा। उसकी पूरी कोशिश थी किसी तरह ये उनके ट्रैप में आ जाए और वो इनको भी इराक से निकाल दे, और फिर खत्म इराक उसके हिसाब से। वैसे तो अल्लाह है अपनी जगह, लेकिन जाहिरी एतबार से, और आगा खोई ने हर जुल्म बर्दाश्त किया, उसे कोई ऐसा मौका न दिया कि नजफ का हौदा तबाह होता या करबला खत्म होता। ये एक अलग हालात है, आज आगा खोई के हालात नहीं बताना है, आजादारी की वजह से बताया मैंने कि आगा खोई जैसे अजीम मर्जे को भी अल्लाह ने एक इम्तिहान में डाला। एक रवायत आपको याद दिला, मासूम से सवाल किया गया कि इतने अंबिया हैं उनमें हजरत यूनुस का अल्लाह ने बड़ा सख्त इम्तिहान लिया, मछली के पेट में गए, फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, 40 दिन तक तस्बीह पढ़ी, फस्तजबना लहू वनजैनाहु मिनल ग़म, फिर हमने उसकी दुआ कबूल की। और इसके फौरन बाद हजरत ज़करिया वाली आयत है जो पहली मुहर्रम की मजलिस में पढ़ चुका हूं। तो हजरत यूनुस का इतना सख्त इम्तिहान कैसे हुआ? तो मासूम ने जवाब यह दिया कि इसलिए कि विलायत अली के बारे में हजरत यूनुस अल्लाह के मासूम नबी हैं, मासूम हैं, मासूम विलायत अली हमारे जद की विलायत के बारे में जो गदीर का ऐलान है, यूनुस जरा सा तजज्जुब में मुब्तला हो गए थे। अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसर बता दूं, वही गलती, अगर इसको गलती कहे, क्या लफ्ज कहूं, सहफ कहिए, तसामो कहिए, जो सलमान फारसी से हुई, जिसकी वजह से वो मिकदाद से एक दर्जा बाद पहुंच गए एक चीज में, एक सब्जेक्ट में। वो क्या, ये तो आपने बार बार सुना है अपने और अपनी जगह साबित है कि आदम से लेके पैगंबर तक जितने अंबिया गुजरे, पैगंबर को छोड़कर, सबसे पहले विलायत अली का इकरार लिया गया, फिर उनको नबूवत की जिम्मेदारियां दी गई। हर नबी ने विलायत अली का इकरार किया। तो जनाब यूनुस से भी नबी हैं, लेकिन कहा अभी नबूवत का स्टार्ट नहीं होगी तुम्हारी, विलायत अली मानो। कायनात के बारे में भी यही जुमला, मौला रावी ने कहा आप अकीक की इतनी फजीलत बताते हैं, अकीक पहनने का सवाब, अकीक की फजीलत, अकीक की वजह से, अकीक का सवाब नहीं है, दूसरी इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, अकीक पहन के नमाज पढ़ो तो वही नमाज का कई मिलियन सवाब हो जाता। तो मौला वजह क्या? अब आजकल तो लोगों ने रिसर्च की है कि अकीक एक स्टोन है, स्टोन है तो कुछ रेज आसमान से ही अपने अंदर एब्जॉर्व करता है जो इंसान को फायदा पहुंचाती है। इमाम ने कहा ये कुछ नहीं, जब अल्लाह ने हमारी विलायत दुनिया के पत्थरों पर पेश की तो सबसे पहले अकीक ने इसको कबूल किया। तो जिसने विलायत अली को माना, पत्थरों में है तो वो अकीक बन गया और आसमानों में है तो बैतुल मामूर बन गया। तो अब इसी में यह हदीस आती है कि यूनुस नबी विलायत अली में शक नहीं था, उनके दिल में यह ख्याल आया कि मैं अभी अली पता नहीं कितने साल बाद आएंगे, तो अभी से ये विलायत का ऐलान इकरार क्यों करवाया जा रहा इन एडवांस, इतना पहले। भाई इतना ख्याल आया अली की विलायत के बारे में और अल्लाह ने कहा यूनुस तुम्हें वो इम्तिहान देना पड़ेगा जो किसी और नबी को नहीं देना पड़ा। तो ये विलायत का मसला, अली की विलायत का मसला इतना अहम मसला, लेकिन विलायत अली जो मैंने कहा कि करबला भी विलायत अली को बचाने के लिए, आगा खोई का वाकया मुकम्मल करूं वरना अगर ये कल तक बात चली गई तो फिर मेरे पास मजलिसे बहुत कम रह जाएंगे मौजू समेटने के लिए। सद्दाम फंस गया, वो कब, जब ईरान पे अटैक तो कर लिया था उसने और बड़े जोश के आलम में था कि क्या शाह के बाद ईरान बहुत कमजोर है, फौज खत्म हो चुकी है, कौन है मुकाबला करने वाला, विद इन आवर्स या विद इन वीक्स पूरा ईरान हमारे कंट्रोल में। वो वक्त आ गए कि शिकस्त पे शिकस्त। तो उसने आगा खोई से भी कांटेक्ट किया, कहा कि इस वक्त पूरी शिया दुनिया में सीनियर मोस्ट आलिम आप और आपकी बात का हर जगह एहतराम, आप कोई एक जुमला ऐसा लिख के दे दें जिसमें ये ईरान के लिए नसीहत हो कि जंग बंद करो। अब वो जंग बंद करना चाह रहा है सद्दाम, लेकिन फंस चुका है वो। तो आगा खोई, अब मैं सारे एक्चुअल जुमले नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं, आगा खोई ने साफ मना कर दिया था। तो अब इसके बाद फिर फौज के जो बड़े बड़े जर्नल थे, फाइव स्टार और नजफ का गवर्नर, इनका एक डेलीगेशन गया था और जाने के बाद जो एक तरीका होता है कि थ्रेट किया, यानी इनडायरेक्ट वे में कि आप मना तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे और क्या निकल सकते हैं और क्या हो सकता है। आगा खोई का चेहरा इतना सुर्ख हो गया जितना उस वाकये में था कि लगा के जैसे खून टपकेगा, और कहा सुनो, उस वक्त आगा खोई की उम्र थी 90 प्लस, जब से होश संभाला है समझ लीजिए 5 साल की एज से आज तक अल्लाह से मैं 3 ही दुआएं करता रहा, 2 दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली, अब 3री दुआ रह गई है जिसका मुझे इंतजार, और मेरी पहली दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे दीन की खिदमत का ज्यादा से ज्यादा मौका दे और मैं मर्जियत की मंजिल पे पहुंचूं। तो आगा खोई तो ऐसे मर्जे बने कि बाकी मराजे के वो मर्जे करार पा रहे हैं। और दूसरी मेरी दुआ जो थी वो ये थी कि अल्लाह मुझे, अच्छा इस काम के लिए ये जरूरी है जो दूसरी दुआ, अल्लाह मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसी बीवी अता करे जो इस काम में मेरी मुआविन बने, क्योंकि बीवी अगर रोजाना फरमाइशात की एक लिस्ट लेके बैठी होगी तो कहां की मर्जियत, कहां का कुरान, कहां की हदीस। मेरे एक दोस्त से जवानी की बात कर रहा हूं, कराची में एक محلہ ہے محمود آباد، وہاں کی مسجد کے پیش نماز سے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، ہر جمعے کو سورہ جمعہ میں کئی غلطیاں کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھی بعد میں، جو مخلص لوگ تھے اس وقت تک، اتنی بدتمیز انتظامیہ مسجدوں اور امام باڑوں میں نہیں تھی کہ بھئی آپ سورہ جمعہ ایک ایسا سورہ ہے، ہر ہفتے آپ کو پڑھنا ہے، اچھی طرح یاد کر لیں. کہا یاد کر کے آتا ہوں، جب یہ سوچتا ہوں گھر جاؤں گا اور میرے بچے تو بھوکے پڑے، کیا کیا ایک پیش نماز کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، ان کے لیے روٹی کا انتظام کہاں سے کروں گا، جب میری بیوی مجھ سے کہے گی کہ میں تو فاقے کر لوں گی، یہ جب بچیاں اس وقت بھوک سے نڈھال ہیں، میں کیا جواب دوں گا. سورہ جمعہ ہو کے نماز اور سب میرے ذہن سے نکل جاتا. ہمارے علماء نے بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے، اور جو کمرشل نہیں ہوئے ہیں وہ ابھی بھی یہ ٹف ٹائم گزار رہے ہیں. اور شاید یہ بھی ایک ریزن ہو کہ بہت سو کو کمرشل بننا پڑ رہا ہے، لیکن یہ موضوع کل کا ہے، آج کا نہیں، ابھی سے بتا دوں. تو خلاصہ یہ، بیوی ایک اچھی بیوی، الحمدللہ اللہ نے ایسی بیوی دی، اس کی وجہ سے میں مرجع بنا. اور تیسری تمنا یہ ہے کہ شہادت مجھے ملے، اب تو اس کا انتظار کر رہا ہوں، 85 سال سے انتظار کر رہا ہوں شہادت ملے. تو تم دھمکی دینے آئے ہو. اچھا وہ واقعہ اپنی جگہ، اس کا جملہ کیا تھا، بیوی ایسی ملے جو دین کے کام میں میری مددگار ہو. اور یہ بہت اہم ایک موضوع ہے امام زمانہ کے لیے بھی اور کربلا کے لیے، بہت اہم موضوع ہے دونوں طرف. اگر صحیح بیوی ملی تو آپ کی بھی زندگی بن جائے گی دنیا اور آخرت کی، اور دین کے لیے بھی انتہا سے زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور اگر غلط بیوی ملی تو یاد رکھیے، خالی آپ کی دنیا تباہ نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے. ایک طرف ہمارے پاس مثلاً یہ آگاہ کوئی کر، تو ایک بطور مثال ایک واقعہ آ گیا کہ بیوی ملی تو خوئی کے علاقے کا رہنے والا ایک نوجوان مرجعیت کی اس اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچا. اب آئیے مقداد کی بیوی. مقداد، اب میں پورا تو بیوی پہ الزام نہیں ڈالتا، لیکن مقداد پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیثیں میں 2 دن پہلے بیان کر چکا ہوں، جن میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ معصوم نے کہا کہ ایک مسئلے میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں، اوور آل سلمان سب سے افضل، وہ ساری چیزیں آ چکی. مقداد قرآن میں الف کی طرح کسی سے نہیں ملتے، سب تنہا اکیلے، ان کا دل نہیں ہے، ہماری محبت اور ہمارے مودت کے اندر لوہے کا ٹکڑا ہے. اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ لوہے کو کوئی چیز نہیں پگھلا سکتی، مقداد کے دل میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں آئی. پہلے حکمران سے لے کے تیسرے حکمران تک مقداد نے ہر ایک کے خلاف منہ پر ان کے جہاد کیا. واقعات ہیں جو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے، کچھ حالات بھی ایسے ہیں، یہ خواتین کی مجلس میں پڑھے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ صرف اپنا مجمع ہوتا. تو خیر، بہت زیادہ مقداد کی تعریف آئی. اور میں نے کہا تھا نا کہ اصحاب رسول کی جتنی کیٹیگریز معصوم نے بتائی سب میں مقداد شامل ہے. ارکان اربعہ، کہا کہ یہ دنیا 4 پلر پر قائم ہے، ان میں سے ایک مقداد. پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے 4 ہستیوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اس میں مقداد. پیغمبر کی حدیث ہے کہ ساری دنیا جنت کا شوق رکھتی ہے، خود جنت کو 4 ہستیوں کا شوق ہے، اس میں مقداد. جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ اصحاب رسول کی امام نے کیٹیگریز بنائی، کہا یہ صحابی ہے، یہ ارکان اربعہ ہے، یہ اصفیاء میں شامل ہے، یہ حواری ہے، یہ شرطۃ الخمس، سب میں مقداد. مگر اچھا، ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں، وہ واقعہ بہت لمبا ہے، ٹائم نہ نکل جائے آج، اس میں ایک اشارہ کر دوں. مقداد کے بعد جو کیٹیگری ہے نا صاحب کی، ان میں ایک نام آتا ہے حجر ابن عدی کا. بہت عظیم صحابی ہیں، لیکن فضیلت میں مقداد کے بعد. مولا کی محبت کے جرم میں حاکم شام معاویہ نے ان کو شہید کروایا، لیکن حضور کی پرسنالیٹی اتنی اسٹرانگ پرسنالیٹی تھی کہ حاکم شام بھی ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو اپنے دربار میں بلا کے قتل کرایا تو عالم اسلام میرے اگینسٹ ہو جائے گا. وہی جو کل میں نے کہا، یہ ہے مسلمانوں کی حماقت. مالک ابن نویرہ سے دعا کروا رہے ہیں، اور جو مالک کو مالک بنا رہا ہے اس رسول کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. मौला पे जुल्म कर रहे हैं या हसन मुश्तबा पे जुल्म कर रहे हैं? हुजूर पे जुल्म करने से डरा जा रहा है, क्यों? क्योंकि मुसलमानों को अली और हसन के मजालिम पे कोई परवाह नहीं है, हुजूर पे जुल्म ना होने पाए, वो सहाबी रसूल है। तो गिरफ्तार करके बुलवाया, लेकिन सिपाहियों से कह दिया कि इसे दमिश्क कैपिटल है ना, कैपिटल में नहीं लाना, उससे बाहर जाके इसको आने से पहले पहले शहीद कर देना। और उधर मुआविया के पास लेटर पे लेटर आ रहे, हजरत आयशा का लेटर आया, क्या है मुआविया, तुमने हुजूर को गिरफ्तार किया और अपने दरबार में बुलाया, क्या तुझे नहीं पता हुजूर सहाबी रसूल है और रसूल इसका कितना एहतराम करते थे, रिहा कर। अब ये सब उसको पता था पहले से हकीम हिशाम को कि ये इतना ज्यादा जो है मेरे खिलाफ एक लॉबी बन जाएगी, यानी सारे मुसलमान खिलाफ होंगे, पहले से कह दी सिपाहियों लेके आ रहे हो, शहर में नहीं आना, शहर के बाहर ही उनको शहीद कर देना। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, मालूम आ गया जी वो अटैक हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस वालों ने अपने इख्तियार से तजावुज किया और वो एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग वो हो गई, चलो इनको बरतरफ करो, उनको मुअत्तल करो, वो इंक्वायरी करो, अल्लाह अल्लाह खैसल्ला। ये कोई आज की बात नहीं है, सारे सिलसिले वहां से मिले, कहा शहर में आने से पहले इनको शहीद कर देना कि बाद में कोई मुझसे कहे कि तुमने क्या किया, मैं कहूँ क्या करूं, मेरे सिपाहियों ने गलती की, मेरे पास तो वो आए ही नहीं, आए होते तो मैं छोड़ देता। हुजूर का वाकया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जब जियारत पे जाते हैं शाम की तो ये वाकया वहां सुनाया जाता है और इंशाल्लाह ये वक्ती रुकावटें खत्म होंगी। आप करबला की जियारत को भी जाएंगे, आप नजफ की जियारत को भी जाएंगे, आप सीरिया की जियारत को भी जाएंगे, तो सिर्फ उसका एक जुमला, हुजूर गिरफ्तार करके लाए जा रहे हैं, रास्ते में खत मिला, बिल्कुल ये शहर के सरहद पर, बिल्कुल शहर के करीब, शहर कौन, डमस्कस जो कैपिटल है, वहां पे वो उसको खत मिला जो सिपाहियों का कमांडर था कि इनको शहीद कर दो। उसने खत पढ़ के सुनाया, कहा देखो हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ये हुक्म हाकिम का हुक्म आ गया, मुझे इस पे अमल करना, और चूंकि हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है तो अगर तुम्हारी कोई वसीयत है तो बता दो, उस पर अमल करेंगे अगर हमारे अख्तियार में हो। पहली वसीयत क्या की थी, मेरे साथ मेरा जवान बेटा भी पकड़ा गया है, पहले उसको शहीद करो बाद में मुझे शहीद करो, बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ। बाप और मां के सामने जवान बेटा पकड़ा जाए, वो कहते हैं हमें मार दो इसको छोड़ दो, और अगर इसको मारना ही मारना है तो पहले हमें मार दो, हम ये दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी आंखों के सामने जवान मारा जाए। हुजूर वसीयत कर रहे, पहले मेरे जवान बेटे को मेरे सामने शहीद करो फिर मुझे शहीद करना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ। लेकिन वजह बताई, मुझे डर है कि अभी तो मैं जिंदा हूं तो मेरी वजह से एक आंख का लिहाज करेगा मेरा बेटा और हक पर रहेगा, अगर मैं मारा गया तो ऐसा ना हो कि अब बाप तो चला गया, कोई बड़ा तो रहा नहीं, वो बेटा मुआविया को मानने लगे और अली के खिलाफ हो जाए जान बचाने के लिए। हुजूर को ये डर क्यों था? एक तो वैसे ही एक आम सी बात है, नहीं, हिस्ट्री में वाकया आया और वाकया ये आया कि मिक़दाद जैसा अली का अजीम सहाबी और मिक़दाद का अपना बेटा जंगे जमल में हजरत आयशा के लश्कर में शामिल हुआ, मौला अली के खिलाफ लड़ा और इस तरह से लड़ा मौला अली के खिलाफ कि उस जंग में मौला अली की मुखालिफत करते हुए, भरपूर जंग करते हुए आखिर में मारा गया। और जब जंग खत्म हुई और मौला उसके लाशे के करीब से गुजरे तो दो जुमले कहे मौला, पहला जुमला यह कहा कि ऐ मेरे भांजे तूने हक अदा न किया अपने मामू का, और दूसरा जुमला यह कहा कि अगर तेरा बाप जिंदा होता तो उसका तरीका तेरे तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन सोचने की बात है, जो सलमान से अफजल बन रहा है एक मसले में, उसका अपना बेटा, अब उजर का बेटा नहीं, मरते दम तक बाप के साथ रहा, मिक़दाद जैसे अजीम सहाबी का बेटा और वो मौला का दुश्मन बन गया। अच्छा, अब यहां पे दो तीन छोटी छोटी बातें करूं, असल तो ये मौजू अब शुरू हुआ था जो मैंने सूरह फुरकान की आयत की तिलावत की थी, अब शुरू हुआ था, अब तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें तरबियत औलाद के हवाले से एक मैसेज भी है इसमें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें अपनी औलाद की तरबियत के लिए, बेटा हो के बेटी, और फिर भी वो बिगड़ जाए तो आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती, अल्लाह का काम अपने कंधे पे मत लीजिए, ये इमाम खुमैनी का जुमला है कि अल्लाह ने तुम्हें अमल का मुकल्लफ बनाया है, नतीजे का जिम्मेदार नहीं बनाया। नतीजा निकालना वो अल्लाह का, वो तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम्हें अपनी कोशिश करना है। बहुत सारे ऐसे बेहतरीन वालिदैन पूरी कोशिश की, बेटा बहक गया, बेटी बहक गई, हिजाब नहीं कर रही, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। हाँ, कोशिश ना की हो तो वो गलती है, उसकी तौबा करना। मिकदाद ने क्या कुछ कोशिश ना की होगी। और गदीर खुम के आखिर में जो पैगंबर ने एक पैगाम दिया विलायत अली, फल युबल्लिग़ अश्शाहिद अल ग़ायब वल वालिद अल वलद, हर मौजूद उनको ये पैगाम दे दे, गदीर का पैगाम जो यहां नहीं, और हर बाप अपने बेटे को ही पैगाम दे। क्या मिकदाद ने इस पे अमल नहीं किया होगा? पूरा जोर लगाया होगा मिकदाद ने अपने बेटे को मौलाई बनाने के लिए, अपने बेटे को अली वाला बनाने के लिए, और वो अली का इतना दुश्मन बना। एक तो जबानी मुखालिफत होती है, एक है तलवार लेके मैदान में निकलना, कितना सख्त दुश्मन बना। अब आखिर ये हुआ कैसे? बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं किसी औलाद के बिगड़ने पर, लेकिन मैंने कहा पहला इत्मीनान तो ये रखिए, अगर आपने कोशिश की है अब इसके बाद अल्लाह आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन जो बात आगाए खुई के वाक़े से, पहले आजादारी से आगाए खुई का वाक़या, फिर उससे आगाए खुई बीवी के रोल की अहमियत, उससे मिकदाद, हुआ ये कि मिकदाद जाहिरी एतबार से जरा से जिस्मानी तौर पे इतने हैंडसम नहीं लगते थे। आज भी लड़कियां वो हैंडसम आदमी चाहिए ना, हैंडसम शौहर, हैंडसम, पता नहीं इसको इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल गुड लुकिंग हैंडसम। मिकदाद का जिस्म भी बहुत भारी था, लंबे चौड़े भी थे, चुनाचे पैगंबर ने अपने जमाने में मिकदाद को वो जिम्मेदारी दी थी जो बहुत बुरी जिम्मेदारी आज समझी जाए, कि जो मुजरिम ऐसे आते थे जिनको कत्ल करना है तो जल्लाद का काम मिकदाद करते थे। इसीलिए कल एक परसों एक जुमला आया था कि हजरत उमर ने कहा था एक मिकदाद इज इक्वल टू 1000, इतना ताकत थी। तो वो ताकत की वजह से जिस्म, उस जमाने में कोई जिम विम तो होते नहीं थे कि वो चले जाते हैं, अरसा गुजर गया, मिकदाद की शादी नहीं हुई। पैगंबर एक दिन मिंबर पे गए और कहा कि अभी अभी जिब्राइल मेरे पास एक पैगाम लाए हैं जिसकी वजह से आज मुझे खुतबा देना पड़ रहा। अभी जैसे कोई कुरान की आयत आती है, अल्लाह का हुक्म आता है, पैगंबर अनाउंस करते हैं, अनाउंस करवाते हैं कि आ जाओ मस्जिद में, आज एक स्पीच होने वाली। तो अभी जिब्राइल एक पैगाम लाए और पैगाम वो लाए कि जब तुम्हारी बेटियां शादी के काबिल हो जाएं तो फौरन उनकी शादी कर दो। शादी में जितना डिले करोगे उतना सोसाइटी करप्ट हो जाएगी और माशरा खराब हो जाएगा। बहुत सारी इसके अंदर पैगामात हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में शादी की एक मिनिमम एज है, लेकिन शादी के बगैर ताल्लुकात रख के रहने में कोई एज नहीं। 10 साल की बच्ची भी हो, 12 साल का बच्चा भी हो, तो कोई इसके लिए सजा नहीं है, कोई कानून नहीं। खैर, पैगंबर ने कहा कि माशरा करप्ट तबाह होता है जब लड़कियां, और खुद पैगंबर की एक हदीस है कि लड़कियों में शर्म और हया लड़कों से ज्यादा होती है। कहा जब ये खराब हो सकती है तो लड़के तो जो वैसे ही बेशर्म और बेहया, एक आम सी बात कर रहा हूं, ये कोई खास किसी एक घर की तरफ नहीं, तो उनको तो और ज्यादा अहम है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम के बहुत सारे ऐसे उठपटंग बयान आते हैं, वाकन सही मानों में एक ही बयान आया था कि माशरे में जो इतना पाकिस्तान में करप्शन फैल गया कि छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे महफूज नहीं है, उसकी वजह यह भी है कि औरतों के बेहुदा लिबास, एक यही गत का बयान था जिसको बाद में उनको वापिस लेना पड़ा। खैर, तो खुलासा यह है कि पैगंबर ने खुतबा दिया कि अभी जिब्राइल आए हैं, मदीने का हालात खराब हो रहे हैं, करप्शन फैल रहा है। करप्शन खाली पैसे का नहीं होता है, अखलाकी करप्शन भी होता। तो पैगाम लेकर आए और फिर वहीं पे पैगंबर ने वो मिसाल भी दी, खुद से नहीं, कहा अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए ये मिसाल भिजवाई कि दरख्त के ऊपर अगर फ्रूट लगाओ और वो तैयार हो जाए। अब आप कहेंगे नहीं भाई, और कुछ दिन इसको दरख्त पे लगा रहे हैं तो और अच्छा हो जाएगा और इसका मजा बढ़ जाएगा। नहीं, अब वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। हर चीज का टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर उसको करो तो सही है। ये जो मिसाल आपने बहुत सुनी है पैगंबर से, ये वही वाकया बता रहा हूं। अच्छा, अब ये तकरीर खत्म हो गई, अब तकरीर खत्म हो गई, पैगंबर का खिताब खत्म, पैगाम दे दिया, लोग डिस्पल होने लगे। अच्छा, फर्ज कीजिए पैगंबर कहां, मैं कहां, मिला मत दीजिएगा। फर्ज कीजिए मैंने किसी मौजू पे तकरीर, दाढ़ी के मौजू पे तकरीर, अब जब मजमा उठेगा ना, तो जो बगैर दाढ़ी वाला होगा उसको देख के कोई साहब कहेंगे, सुना मौलाना को तुमने क्यों नहीं रखी दाढ़ी, यही होता है ना। ये जो टोंटिंग है ना, ये बहुत से लोगों को नेकी के रास्ते पे आने से रोक देती है। अगर फर्ज कीजिए हिजाब पे मैंने कोई मजलिस पढ़ी है और खवातीन वो मजलिस सुन के बाहर आ रही है, तो जो हिजाब वाली होगी बेहिजाब से, सुना तुमने क्या कहा अभी मौलाना ने या जाकिरा ने, तो ये जो एक टोंटिंग होती है ना, ये एक लोगों को मजा आता है गुनाहगार को जलील करने में। गुनाहगार की गलती बताना अलग चीज है, उसको जलील करना अलग चीज है। अब हुआ क्या कि अब्दुल रहमान इब्ने औफ, ये भी बड़े हजरत हैं, वक्त नहीं है कि कुछ बता सकूं, इन्होंने मिकदाद को देखा, कहा मिकदाद सुना भी रसूल अल्लाह को, कितना शादी का पैगाम दे रहे थे, तुमने अब तक शादी नहीं की। मिकदाद बहुत आउट ऑफ स्मोकिंग, मैंने कहा ना हर हुक्मरान के सामने बोले। मिकदाद ने कहा, ताना दिया ना, तुमने क्यों नहीं शादी की। मिकदाद ने कहा, तो तुम ही अपनी बेटी की शादी मुझसे कर। ओहो, वो तो भाग बगौला हो गए, वो इसलिए को थोड़ी कहा था, उनको तो अपने खानदान पे फखर था। ये मिकदाद ने क्या कह दिया, ना खानदान के एतबार से अच्छा है, ना शक्ल सूरत के एतबार से अच्छा है। एक मरतबा कहा कि मिकदाद जबान संभाल के मेरी बेटी के बारे में ये बात करते हो। मिकदाद रंज के आलम में, गम के आलम में रसूल के पास गए कि या रसूल अल्लाह, आपने शादी की बात कही, एक साहब ने मुझसे कहा कि शादी करो, उनकी बेटी शादी के काबिल है, मैंने रिश्ता दिया और उन्होंने फौरन ठुकरा दिया। ये नहीं कहा कि अभी मेरी बच्ची छोटी है या अभी शादी नहीं करना, नहीं, मिकदाद में खराबी निकाली। पैगंबर ने कहा उसने खराबी निकाली, मैं अपने चचा की बेटी की शादी तुझसे करता हूं, मैं अपनी चचाजाद बहन, पैगंबर की सगी चचाजाद बहन, पैगंबर के चचा का नाम है जुबैर, जिनको दुश्मनान अहले बैत हजरत अबू तालिब के मुकाबले में लाते हैं। वो शख्सियत बहुत ठीक थी, कभी सुना होगा शायद, ये आपने शायद ना सुना, कि वो दुश्मनान अहले बैत कहते हैं रसूलुल्लाह को अबू तालिब ने नहीं पाला, जुबैर ने पाला, क्योंकि जुबैर बड़े भाई थे, उन्होंने पाला, अबू तालिब छोटे थे। तो ये जुबैर की बेटी थी सबागा। पैगंबर ने कहा ये मेरी बहन है, फर्स्ट कजिन, मैं शादी करता हूं, पूछने की जरूरत भी नहीं है लड़की से, याद रखिएगा यह है विलायत, यह हक विलायत है कि अल्लाह का रसूल हो के इमाम किसी भी लड़के या लड़की की शादी उनसे पूछे बगैर, उनकी इजाजत के बगैर कर सकता। सूरह अहज़ाब की खुली आयत, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलहु अमरा, जब पैगंबर ने ज़ैनब की शादी ज़ैद से की थी वो अलग वाकया। खैर, पैगंबर ने कही शादी मैं करता हूं, शादी हो गई और इसी शादी के नतीजे में वो बेटा पैदा हुआ। अब हुआ ये कि ये जो लड़की थी ना, यानी मिकदाद की बीवी, इनके रिश्ते किस किस से हैं, रसूल खुदा से हैं, उनके चचा की बेटी, सेम रिश्ता मौला से, मौला भी उन चचा के बेटे, तभी मौला ने भांजी का भांजा कहा कि मौला की कजिन सिस्टर है उनका बेटा। जंगे जमल में क्यों कहा कि भांजे, तो उन्हें हक अदा नहीं किया अपने मामू का। इन दो से रिश्ता है सेम, सेम रिश्ते का मतलब क्या है कि दोनों जबाका के, मिकदाद की बीवी, जहन में रखिएगा, आगा खुई की बीवी से मैं मिकदाद की बीवी पे आ रहा हूं, मिकदाद की बीवी इन दोनों की बहन, ठीक है, यानी रसूल और मौला फसकर। मगर इस अबू तालिब के बहुत बेटे थे ना, और बहुत बेटियां थी, दस से दस तो लड़के और लड़कियां भी। एक का नाम था सफिया, अबू तालिब ने अब्दुल मुत्तलिब, सफिया, नाम ज्यादा हो गए ना, तकरीर खत्म हो रही। जनाब सफिया वो है कि जब आप जन्नतुल बकी में जाते हैं तो पैगंबर की दो फूफियों की जियारत करते हैं जो उम्मुल बनीन के पहलू में दफन है, सफिया और आतिका। ये सफिया, ये उस बच्ची की कौन हुई, फूफी, मिकदाद की बीवी जो है ना, जबागा, जुबैर की बेटी है, जुबैर के भाई अबू तालिब अब्दुल्ला, तो अली और मोहम्मद, और उनकी बहन सफिया जुबैर की, ये फूफी की बेटी हुई। अब ये जो सफिया फूफी हुई, इनके बेटे निकले जुबैर, तलहा और जुबैर, बहुत नाम सुना होगा आपने, آج کو زیادہ نام ہو گئے، طلحہ و زبیر. زبیر کا مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ جو بچی ہے نا زباغہ، یعنی مقداد کی بیوی، یہ زبیر کی کزن، تینوں کی کزن ہو گئے رسول اللہ، تو ان سے جو کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، علی وہ ایک کزن اور زبیر دوسرے کزن. زبیر جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو میدان میں لانے والے تھے مولا کے مقابلے میں، طلحہ اور زبیر. تو اب جنگ جمل جو ہو رہی ہے، ایک طرف علی ہے ایک طرف حضرت عائشہ، مگر حضرت عائشہ کی جو رائٹ اور لیفٹ دو آدمی ہے طلحہ اور زبیر، ان میں سے زبیر خاندان اہل بیت کے ہیں، اور مقداد کی جو بیوی ہے اس کے ایک کزن علی ہیں جو جنگ جمل میں ایک طرف ہے، دوسرے کزن زبیر ہیں جو جنگ جمل میں دوسرے. زبیر جو تھے وہ مکمل علی کے اگینسٹ ہو گئے. کیوں؟ ان کی اپنی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء، ان کی شادی وہاں ہو گئی تھی. تو اب زبیر اپنی بیوی کے اتنے انفلوئنس میں آ گئے کہ مولا علی کے کزن ہیں اور مولا کے خلاف میدان میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے خاندان کے جتنے نوجوان ان کے کنٹرول میں آئے ان کو علی کے خلاف لے گئے. اب کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ مقداد کی بیوی انفلوئنس میں آ گئی ہے اپنے کزن زبیر کے، اور زبیر انفلوئنس میں اپنی بیوی کی. چنانچہ ان عورتوں کی وجہ سے علی کے کتنے چاہنے والوں کی اولادیں علی کے خلاف میدان میں تلوار لے کے آ گئے، علی کے خلاف، ماں کی وجہ سے، پھوپھی کی وجہ سے. جو آغا خوئی نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ایسی بیوی مجھے ملے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اگر بیوی ایسی نہ ہو تو آدمی امامت کے خلاف ہو جاتا ہے، امام کا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اور مقداد کا بیٹا ہونے کے باوجود. مولا نے کہا بھانجے تو نے ماموں کا حق ادا نہ کیا، تیرا باپ زندہ ہوتا. اب یہ منظر حجر دیکھ چکے ہیں، حجر تھے اس جنگ میں. مقداد کا بیٹا اور علی کے خلاف، جب اپنے بیٹے پر وقت آیا کہا پہلے میرے بیٹے کی گردن اڑا دے، ایسا نہ ہو کہ مقداد جیسی کہانی میرے یہاں بھی آ جائے. لیکن ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کہ ہاں کربلا میں ہمیں وہ بیویاں نظر آ رہی ہیں جن میں سے کسی کو اپنی اولاد کی جان بچانے کی پرواہ نہیں، اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ. لیکن اس میں جو نام لیے جاتے ہیں وہ ساری قابل احترام بیویاں ہیں، جو کل سے آنے والے کل سے جن کے مصائب شروع ہوں گے، چاہے وہ آن محمد کی ماں زینب کبریٰ کا تو نام لینا ہی تو ہی، اور چاہے وہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ، اور چاہے وہ قاسم کی ماں ام فروا، اور چاہے اصغر کی ماں رباب، وہ تو اپنی جگہ ہیں. لیکن وہ معیار اتنا اونچا کہ ہم اپنی عورتوں کو ایز اے رول ماڈل ان کے نام نہیں دے سکتے. ہماری عورت کیا ام لیلہ بن سکتی ہے؟ ہماری عورت کیا ام فروا بن سکتی ہے؟ ہماری عورت کیا رباب بن سکتی ہے؟ ابھی آپ نے ان عورتوں کے نام سنے جو خاندان بنی ہاشم کی ہیں مگر مخالف ہیں علی کی. تو اپنی اولادوں کو، اور اپنی اولاد تو چھوڑو خاندان کے دیگر اولادوں کو بھی علی کے خلاف کیا. اب وہ عورتیں دیکھی. لیکن اب میں ان کے نام کیوں لوں کہ جو ہماری عورتوں کے لیے اتنی بلند ہیں کہ ہماری عورتیں خالی ان کا نام سنیں گی کہیں گی کہ ان کی مثال ہمارے لیے بیکار، ہم بنی نہیں سکتے ان جیسے. تو نام کیوں نہ لیا جائے زوجہ حبیب ابن مظاہر کا. زوجہ حبیب ابن مظاہر نہ کوئی معصومہ، نہ کسی معصوم کی بیٹی ہے، نہ کسی معصوم کے گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن کیا کردار پیش کیا ہے زوجہ حبیب ابن مظاہر نے. یہ بتایا ہے کہ ایسی ہوتی ہیں علی اور فاطمہ کی کنیزیں. وہ نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے حجاب کی پرابلم کی وجہ سے دین ہی کو خدا حافظ کہہ بیٹھے. زوجہ حبیب کو ہمارا سلام ہو اور بار بار سلام. ہماری عورتیں حبیب ابن مظاہر کی بیوی کی تو مثال سامنے رکھ سکتی ہے نا. حبیب ابن مظاہر کربلا کا وہ شہید ہے جس کے بارے میں ایک جملہ عراق میں بہت مشہور اور تجربہ شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حبیب کا واسطہ حاجت قبول کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے. شہدائے کربلا میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ حاجت روا اور مشکل کشا. اہل بیت کی تو عظمت اتنی زیادہ کہ سوچ بھی نہ سکے. اگر سوچئے ذرا کہ جب امام ان کے قبروں پہ جاتے ہیں روزوں پر تو ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو محاورے میں صحیح مگر امام کی شان کے خلاف لگتا ہے، بے ابی و امی، اے کربلا کے شہیدوں، میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان، یہ امام فرما رہا ہے. اور ان میں نمایاں نام حبیب کا ہے کہ حبیب کا واسطہ، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کبھی کوئی حاجت پیش آئے، جیسا کہ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ تمام اصحاب امام جو کربلا میں تھے، آقا نے ان کا سردار حبیب کو اس وقت بھی بنایا تھا اور قیامت تک کے لیے شہداء کربلا کے سردار حبیب ابن مظاہر، یہ شہداء کے سردار. اور انہی کے ذریعے سے حسین صاحبان ایمان کی حاجتیں پوری کرنے کا پیغام بھیجواتے ہیں، جاؤ حبیب فلاں کو پیغام دے دو، میں نے اس کی حاجت پوری کر دی. حسین کے بچپنے کے دوست تو ہیں لیکن اور بھی کئی دوست ہیں. حبیب جیسا حق وفا اور محبت و دوستی کا حق کسی نے ادا نہ کیا. بعض علماء جیسے خود مولانا زیدی صاحب قبلہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ حبیب کی عظمت کے لیے، اول تو دیکھیں یہی چیز حبیب کی عظمت کے لیے کتنی اہم ہے کہ آج بھی آپ آقا حسین کے روضے کی زیارت کو جائیں گے، پہلے حبیب کی ذریعہ آئے گی، ان کو سلام کریں گے، پھر حسین کے پاس پہنچیں گے. اب حجاب اور پردے کے مسئلے کی وجہ سے عورتوں کا انٹرسٹ دوسری طرف سے ہو گیا ہے، لیکن مرد جب جاتے ہیں پہلے حبیب کی ذریعے. آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی دربان آقا کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اس کی اجازت ملے تو تمہیں آقا تک جانے کی اجازت ملے گی. اور جو جملہ میں کہتے کہتے رک گیا تھا، کہتے ہیں کہ حبیب کی عظمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ دو محرم کو حسینی قافلہ کربلا پہنچا اور دو محرم سے حر کے خط گئے ابن زیاد کے نام. اور جب خط جاتا ہے تو ابن زیاد فوج بھیجتا ہے، دوسری فوج، تیسری فوج، فوجوں پہ فوجیں کوفے سے آ رہی ہیں. جب کوئی فوج آتی ہے میدان کربلا میں تو فوج کے آنے کا ایک شور ہوتا ہے. چنانچہ زینب بار بار کہتی ہے، اماں فضہ ذرا جا کے دیکھنا، شاید کوئی میرے بھیا کی مدد کرنے والا آ گیا ہو. اور فضہ دروازے پہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، نہیں شہزادی، مولا کا مددگار تو کوئی نہیں آیا، مثلا عمر سعد آیا، مثلا حرملہ آیا، مثلا سنان ابن انس آیا، مثلا خولی آیا، مثلا شمر آیا، ایک ایک کا نام جو فوج آتی. شہزادی کہتی ہیں، شاید اب کوئی آ گیا، شاید اب کوئی آ گیا. اور فضہ واپس آ کے وہ نام لیتی ہیں جن سے زینب اچھی طریقے سے آگاہ، کوئی میرے اکبر کو شہید کرنے والا، کوئی میرے اصغر کے گلے کو چھیدنے والا، کوئی میرے اون محمد کے سینے پہ برچی مارنے والا، کوئی میرے حسین کے گلے کو کاٹنے والا، وہی نام. آخر ایک مرتبہ جب سات محرم کو شمر آیا، زینب کو پتا شمر کس کا نام. اب جب فضہ نے آ کر کہا کہ نہیں شہزادی، آقا کا کوئی دوست نہیں آیا ہے، زینب کبریٰ نے کہا کہ اچھا جاؤ بھیا کو میرا پیغام تو میں بات کرنا چاہتی ہوں. حسین آئے، زینب بہن کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہا بھیا دو محرم سے آج سات محرم ہو گئی، فوجوں کے آنے کی خبر، فوجوں کے آنے کا شور، فوجوں پہ فوجی آ رہی، سب تیرے دشمن ہیں، کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کرے؟ حسین نے سر جھکا لیا، کہا بہن زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں اسے تفصیل بتاتا، تجھے کیا بتاؤں، تو نے تو پورا زمانہ دیکھا، نانا دنیا سے گئے کس نے ہمارا ساتھ دیا، اماں پہ ظلم ہوئے کس نے ہمارا ساتھ دیا، بابا مارا گیا کس نے ہمارا ساتھ دیا، بھیا شہید ہو گئے کس نے ہمارا ساتھ دیا. زینب نے کہا لیکن تیرا ایک چاہنے والا ایسا کہ مجھے یقین ہے اگر تو اسے بلائے گا، کوئی آئے کہ نہ وہ فوراً آئے گا. اور وہ کون؟ کہا حبیب ابن مظاہر. اے حبیب، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا نام علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب نے لیا اور تمہیں زینب نے یاد کیا میدان کربلا میں. حسین نے خط لکھا، قاصد کو بھیجوایا، قاصد کے ذریعے بھیجوایا. اب جب کوفے سے فوجوں پہ فوجی آ رہی ہے نا، تو ابن زیاد نے کوفے کو چاروں طرف سے بند کر دیا، کسی کا کوفے میں جانا تو ممکن ہے، کوفے سے باہر آنا ممکن نہیں ہے. ابن زیاد بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں حسین کا مددگار نہ نکل جائے. बहुत बुरे हालात है कूफे के। दोपहर का वक्त है, हबीब अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई, दक्कुल बाप। हबीब ने पूछा कौन, दरवाजे के पीछे से आवाज आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। वह इतना सुनना है, हबीब तड़प के खड़े हो गए, मगर बीवी से कहा और बीवी ने खुद ही ख्याल किया कि पर्दे के पीछे चली जाओ। जोजा हबीब पर्दे के पीछे गई, हबीब ने दरवाजा खोला, हुसैन का कासिद खड़ा है, बड़े एहतराम के साथ ले गया। क्यों आका ने क्यों जहमत की? खत दिया कि आका ने ये पैगाम तुम्हें भेजा। हबीब ने खत लिया, पहले तो सर पे रखा, आंखों से लगाया, होंठों से बोसा दिया, फिर खत खोल के पढ़ा। भैया हबीब, मैं करबला में आ गया हूं, अगर हो सके तो मेरी मदद को आ जाओ। बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हो गए। लब्बैक या अबा अब्दुल्ला, जो हम नारा लगाते हैं ये पहले हबीब ने लगाया था। लब्बैक या अबा अब्दुल्ला, लब्बैक या हुसैन, आका मैं हाजिर हूं। कासिद से कहा कि वापिस चला जाओ, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब हबीब को यह फिक्र है कि हुसैन का साथ देने का मतलब है मौत। बीवी को कैसे बताऊं, एक औरत के लिए उसका सुहाग सबसे कीमती चीज होती है। और इधर कासिद गया, हबीब की जौजा पर्दा हटा के खुद ही बाहर आ गई इस कमरे में। अरे हबीब, मेरे आका का कासिद आया था, क्यों आया है? कहा कि हुसैन करबला आ गए, करबला करबला यानी कूफे के करीब, और मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया। जौजा हबीब ने कहा, तो हबीब तूने क्या फैसला किया, इम्तिहान भी लेना है ना। हबीब ने कहा कि अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या जवाब। ये मक्तल का जुमला मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा। जौजा हबीब एक मरतबा जलाल में आ गई, हाथों से उसने अपने कंगन और चूड़ियां उतार के हबीब के सामने फेंक दी और कहा, हबीब ये पहन के घर में बैठ जा और अपनी तलवार मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, ये दिन भी आना था कि मेरा आका हुसैन बुलाए, मेरी शहजादी फातिमा को शहजादा बुलाए और मेरा शौहर कहे अभी मैं सोच रहा हूं। हबीब ने घबरा के कहा, नहीं, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, मैं तेरे लिए सोच रहा हूं कि मेरे बाद तुझ पर क्या गुजरेगी। तो हबीब का जवाब है कि आए हबीब, मैं मिट्टी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस घर में तेरे साथ रहूं जिसे हुसैन बुलाए और वो हुसैन की मदद को ना जाए। हबीब ने कहा कि मैं तो सिर्फ तेरी वजह से ये जवाब दे रहा हूं, वरना मैं तो तैयार हूं। तो अजय हबीब ने एक मरतबा, अब हबीब तैयार होकर निकलना चाहते हैं, हबीब का दामन पकड़ लिया। हबीब घबरा गए कि शायद उस वक्त जोश में इजाजत दी थी, अब रियलाइज हुआ है तो रोक रही। घबरा के कहा, क्या बात है? कहा कि लेकिन हबीब एक वादा करके जा, जब आका के पास पहुंचेगा पहले इस कनीस का सलाम पेश करेगा, फिर अपना सलाम आका से करना। अल्लाह अल्लाह, ये भी वो कनीजाने जहरा और कनीजाने जैनब कुबरा गुजरी। और हबीब कूफे के हालात देख रहे हैं, चुनाचे रात के वक्त घर से बाहर निकले छुपते छुपाते, लेकिन गुलाम को दिन को भेज दिया था घोड़ा देकर कि अगर मैं घोड़ा लेके जाऊंगा सिपाही रोक लेंगे। गुलाम बाहर इंतजार कर रहा है, बहुत देर हो गई, हबीब नहीं आया। गुलाम ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली और कहा कि है मेरे आका की सवारी के जानवर, शायद मेरा आका घर में बैठ गया है, अगर वो थोड़ी देर में ना आया मैं तुझ पर सवार होके अपने आका हुसैन की मदद को जाऊंगा। ये जुमला हबीब ने सुन लिया, आंखों में आंसू आ गए। मौला, आज ये दिन आ गया कि अदना गुलाम वो तेरे मददगार बनने जा रहे हैं। और फिर हबीब अपने गुलाम के साथ करबला के मैदान में आ गए। बहुत ताखीर हो गई है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब मैदान करबला में हबीब आए, हबीब को सबने पहचान लिया, ये हुसैन के बचपने का दोस्त है। चुनाचे हर तरफ से हबीब को देख के खुशी के नारे बुलंद हो रहे हैं, हबीब को सलाम किया जा रहा। जैनब कुबरा अपने खेमे में है, ये खुशी की आवाजें सुनी, फिज्जा से कहा, अम्मा फिज्जा, आज पहली मरतबा करबला आने के बाद, आज पहली मरतबा मेरे भैया के लश्कर से खुशी की आवाजें, क्यों जरा देख के आ। फिज्जा गई, मंजर देखा, फिज्जा भी पहचानती है हबीब को। एक मरतबा आकर कहा, शहजादी जैनब, हबीब आ गए, हबीब इब्ने मुजाहिर आ गए, उनके आने पे खुशी मनाई जा रही। वह इतना सुनना था। जैनब ने कहा, फिजा जरा जाके हबीब को मेरा पैगाम देना, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हबीब को शहजादी का पैगाम मिला, हबीब आए, हुसैन साथ साथ। خیمے کے اندر زینب ہیں، پردہ پڑا ہے، پردے کے باہر حبیب ہیں اور حسین برابر میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا زینب بہن مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ بس اتنا سننا تھا زینب نے کہا بھیا حبیب سب سے پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام لو، فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ ہائے حبیب سارا بدن کانپا، غش کھا کے گر پڑے۔ شہزادی یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو بلا کے براہ راست سلام کہا جا رہا۔ یہ خاندان اہل بیت ہے جہاں کی خواتین اپنی آواز کا بھی حجاب رکھتی ہیں، جو شرن واجب نہیں، لیکن حبیب کا وہ رتبہ۔ اور ایک مرتبہ زینب نے کہا حبیب بس میرے بھیا کا خیال رکھنا، اور اس دن سے لے کے عاشور تک حسین کے ہر معاملے میں یا عباس مشیر ہیں یا حبیب مشیر ہیں۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں۔ اتنے میں ظہر کا وقت آ گیا، حسین کے ایک صحابی نے آج کل جن کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے ابو سمامہ، آسمان کو دیکھا، فرزند رسول دوپہر کا وقت آ گیا، وقت نماز آ گیا ہے، ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ حسین نے دیکھا، ابو سمامہ نے نماز کو یاد کیا، میدان کربلا گھمسان کی جنگ چلتے ہوئے تیر ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اے ابو سمامہ جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نمازیوں کے گروہ میں شامل کر کے قیامت میں اٹھائے۔ اور کہا حبیب یہ سب تو میرے یہاں کے ساتھی ہیں، تم کوفے والے ہو اور یہ سامنے لشکر بھی کوفے والوں کی اکثریت، جا کے صرف نماز کی اجازت لے کے آؤ، اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے، کہا اے عمر ساتھ اتنی دیر کے لیے لڑائی روک دے، یہ تیر روک دے، یہ تلوار روک دے، ہم لوگ نماز پڑھ لیں۔ بڑا عجیب جواب دیا عمر ساتھ نے، حسین کے دشمن خالی دشمن نہیں ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، اتنے ذلیل ہیں فطرت کے اعتبار سے۔ کہا گیا ابھی حسین کی نماز قبول کہاں ہوگی جو وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان سے کہہ دو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی برداشت نہ کر سکے، تڑپ کے کہا اے دشمنان خدا تمہاری نمازیں قبول ہو اور حسین کی نماز قبول نہ ہو۔ وہیں سے آواز دیا، آقا اب جملہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے جا کے پڑھوں گا۔ اور ایک مرتبہ وہ جہاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حبیب شہید ہو گئے، حبیب مارے گئے، حسین حبیب کا لاشا اٹھا کے وہاں لائے جہاں سارے لاشے رکھے جا رہے ہو۔ دو آخری جملے سن لیجیے، اور آپ کی زحمتیں تمام۔ 11 محرم کا دن آیا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، کوفے میں داخل ہوا، محمل نہیں ہے، اماری نہیں ہے، کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں، بالوں سے چہرہ چھپایا، اونٹوں پہ اکیلے بیٹھی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا سجاد جو سب سے آگے پیدل چل رہے ہیں اور آقا کے بالکل پیچھے والے اونٹ پر زینب۔ آقا نے دیکھا کسی بچے نے آ کے میرا گھٹنا ہلایا، جھک کے دیکھا آقا نے اور کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا کہ مولا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں، آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ آقا سجاد نے پلٹ کے اونٹ کی جانب دیکھا، بھوپی اما میرے چچا حبیب کا یتیم آیا۔ میں جیسے ہی سننا تھا زینب نے کہا بیٹا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ برابر کے مکان سے آواز آتی ہے، چھت پر عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہتی ہے شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے، نگاہیں اٹھانے کی اس وقت ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے آپ کو دیکھوں؟ بس یہ سننا تھا، یہ ہے اہل بیت کریم ابن کریم۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تیرے شوہر حبیب کا پرسہ دوں، ارے مجھ سے اپنے حبیب کا پرسہ لے۔ شہزادی آپ کو پرسہ دے رہی، آپ کو پرسہ دینے والا بھی ملا۔ اور اتنی دیر میں ایک ایسا، بس آخری جملہ، ایک ایسا منظر دیکھا، ذرا سوچیں غیرت مند سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک عجیب جملہ، یہ حبیب کا چھوٹا بیٹا، وہ زوجہ حبیب اور حبیب کا بڑا بیٹا۔ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا وہ ننگی تلوار لے کے سامنے آ گیا، جس نیزے پر حبیب کا کٹا سر تھا وہ نیزہ اٹھانے والے پہ حملہ کرتا ہے، اس کی گردن اڑاتا ہے۔ अपने बाबा का कटा सर लेता है और तेजी से सर लेके भागता है कि फौजी यजीद पीछे ना आए, मगर एक जुमला कह के भागा। क्या कह के भागा? यह जालिम तूने क्या समझा है? क्या मेरा बाबा लावारिस है? अभी उसका वारिस जिंदा है, वो अपने बाप के कटे सर को नहीं देख सकता। ये जुमला सज्जाद भी सुन रहे, मौला हबीब का यतीम ये कह के जा रहा, हबीब लावारिस नहीं है, आपने अपने बाबा का कटा सर किस तरह से नुक्के नैजा पे देखा। أجركم على الله ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پروردگار تجھے حبیب ابن مظاہر کے اس ایثار و وفا کا واسطہ، ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی جان ایثار اور وفادار قرار دے۔ خدا بندہ تجھے اس امتحان کا واسطہ جو حبیب نے دیا، زوجہ حبیب نے دیا، حبیب کے یتیم بچوں نے دیا، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو فاطمہ کے لال اور فاطمہ کے گھرانے نے دیا، دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان دلوں میں کوئی حاجت لے کے بیٹھے ہیں، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خاص طور پر لاہور میں ایک مومنہ بہت پریشان ہے خاص مسئلے میں، خدا بندہ ان کی مشکل کشائی فرما۔ میرا مظلوم آقا سجاد بازار کوفہ میں حبیب کے بیٹے کا ہی جملہ ہی نہیں سن رہا، بیماری کے عالم میں بھی ہے۔ تجھے بیمار امام کا واسطہ، دنیا بھر کے بیماروں کو، خصوصاً کورونا کے تمام مریضوں کو، اور پھر برادر عدنان کلیم صاحب کی بیٹی، عقیل مرجن صاحب کی بیٹی، اور مولانا رضا داودانی اور ان کے بھائی عابد داودانی کے والدہ نرگس داودانی جو پیرالائز ہوئی ہیں، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا انہی بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ جن کے کٹے سر بازار کوفہ میں لائے گئے، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً الاسر کے بانی مرحوم غلام عباس پنجو صاحب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، اور جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین،
بادشاہ حسین۔